हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 383 सुनैना की तरफ बहुत ही नफरत भरी निगाहों से देखते हुए ये सब कुछ बोल ही रही थी, और वो अपनी बात पूरी कर पाती कि उससे पहले ही उसके चेहरे पर एक तेज थप्पड़ पड़ा, और वो थप्पड़ इतनी तेज था कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे का पूरा जबड़ा हिल गया है, और वो थप्पड़ किसी और ने नहीं बल्कि सुनैना के साथ खड़े आदित्य ने मारा था। और उस थप्पड़ की गूंज भी इतनी तेज थी कि आसपास खड़े सारे लोगों का ध्यान उस तरफ ही हो गया, और आदित्य ने गुस्से भरी लाल आंखों के साथ उसे उंगली दिखाते हुए बोला, बस बहुत बोल लिया तुमने, सुनैना कुछ कह नहीं रही है तुम्हें, तो क्या तुम जो मुंह में आएगा वो बकती जाओगी? बंद करो अपनी ये बकवास, अगर दूसरा थप्पड़ नहीं खाना चाहती हो तो। आदित्य ने शायद आज पहली बार ही उसके सामने इस तरह से किसी को थप्पड़ मारा है, और ये देखकर सुनैना एकदम ही हैरान रह गई। उसे पहले तो समझ ही नहीं आया कि अभी अभी वहां पर उसके सामने क्या हुआ, लेकिन जैसे ही उसे समझ आया वो जल्दी से आदित्य का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचते हुए बोली, आदि तुम क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं यहाँ पर। इतना बोलकर सुनैना उसे पीछे लेकर आ गई और थोड़ा शांत कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदित्य इस वक्त बिल्कुल भी शांत होने के मूड में नहीं है। उसने गुस्से में तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हाँ तो देखने दो, मैं नहीं डरता हूँ किसी से, वैसे भी ये लड़की अपनी हद पार कर रही है। एक तो इसे अपने भाई की करतूते नहीं पता कि किस तरह से उसने तुम्हारा किडनैप किया और फिर तुम्हें जान से मारने की कोशिश, इसके अलावा उसकी गंदी नजरें तुम पर नहीं, मैं तो वो सब कुछ याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये लड़की पता नहीं क्या चाहती है, इसे इस बात की खुशी नहीं है कि उसका भाई कम से कम जिंदा बच गया, नहीं तो मैं उसे जान से ही मार डालता। इतना बोलते हुए आदित्य का पूरा शरीर गुस्से में बहुत ही ज्यादा कांप रहा है, क्योंकि जो कुछ भी उसने अभी अभी बोला वो सब कुछ याद करके उसकी आंखों के सामने वो सारे सीन फिर से याद आने लगे, जो कुछ भी सुनैना ने सफ़र किया था, और इन सारी बातों को लेकर वो सुनैना के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत सेंसिटिव है, और ये बात सुनैना भी बहुत अच्छी तरह से जानती है। दूसरी तरफ अवंतिका अभी भी अपने गाल पर हाथ रखकर खड़ी है, उसका उस तरफ का गाल एकदम लाल हो गया है जिस पर आदित्य ने थप्पड़ मारा था, और उसकी उंगलियों के छपे हुए निशान एकदम साफ नज़र आ रहे हैं, और आदित्य को इस तरह से गुस्से में देखकर अवंतिका और पूनम दोनों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ भी बोलने की, और पूनम अवंतिका को वहां से लेकर चली गई। उन दोनों को वहां से जाते देखकर सुनैना ने राहत की सांस ली और आदित्य से बोली, आदि अब वो कुछ भी नहीं कहेगी, अब चलो तुम यहां से, वैसे भी हम जिस काम के लिए आए थे वो हो गया है ना, हमें यहां से चलना चाहिए। इतना बोलकर वो आदित्य को लगभग अब खींचकर वहां से बाहर की तरफ ले जाने लगी, और वो आसपास खड़े सारे लोग उन दोनों को हैरानी से देख रहे हैं। ये नोटिस करते ही आदित्य ने घूरकर बाकी सब लोगों की तरफ देखा, तो आदित्य का ऐसा रूप देखकर वो सभी लोग वहां से थोड़ा सा इधर उधर हो गए, क्योंकि आदित्य का ऐसा रूप देखकर कोई भी डायरेक्ट उसके गुस्से का शिकार नहीं होना चाहता, जिस तरह से अभी अभी अवंतिका और पूनम हुई थी। वहां पर अभी अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद से सभी ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं कि आदित्य और सुनैना हस्बैंड वाइफ हैं, और आदित्य सुनैना को इतना प्यार करता है, उससे भी ज्यादा वो उसे लेकर प्रोटेक्टिव और पजेसिव है, इसलिए आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद से सभी सुनैना को लेकर काफी ज्यादा केयरफुल रहने वाले हैं, और ये बात आदित्य को भी समझ आ गई है। वो सुनैना को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करता हुआ वो उसके साथ वहां से बाहर पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। आदित्य कार के अंदर आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया, और वो दोनों आज वहां पर एक साथ अकेले ही आए थे, बिना किसी ड्राइवर, बॉडीगार्ड या फिर रवि भी अभी उनके साथ नहीं था, इसलिए वो दोनों वहां पर आकर बैठ गए। लेकिन सुनैना ने तुरंत ही कार स्टार्ट करके उसे चलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उसने देखा कि आदित्य बहुत ही ज्यादा गुस्से में है अभी भी, और ड्राइविंग सीट पर बैठते ही आदित्य ने स्टेयरिंग पर गुस्से में हाथ मारते हुए कहा, क्यों क्यों करती हैं वो लोग ऐसा, इतना गुस्सा क्यों दिला दिया मुझे, और ऐसा क्यों बोलती हैं, और सुना तुम क्यों सुनती रहती हो, कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसे ज्यादा गुस्सा किस पर आ रहा है, सुनैना पर या उस अवंतिका पर या फिर उसकी सहेली और विराज पर, लेकिन वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका सारा गुस्सा उसकी सोना पर ही निकल जाए। आदित्य की ऐसी सिचुएशन देखकर सुनैना को भी समझ आ रहा है कि इस वक्त वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, इसलिए उसने बहुत ही आराम से उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, आदित्य प्लीज शांत हो जाओ, और मैं भी ऐसे ही किसी की बात नहीं सुनती हूँ, लेकिन उसे पूरी बात नहीं पता है, शायद इसीलिए वो। सुनैना की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी आंख बंद करके दोबारा से खोली और अपने सिर पर हाथ रखकर अपने माथे पर आए हुए बालों को पीछे करते हुए बोला, ओके लीव इट, चलो घर वापस चलते हैं। आदित्य ने इतना बोला तो उसकी बात सुनकर सुनैना ने भी धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए उसके हाथ के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया। सुनैना फिलहाल के लिए चुप हो गई, लेकिन तभी उसे एकदम से कुछ याद आया और आदित्य ने जैसे ही कार स्टार्ट की तो सुनैना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, घर, लेकिन घर क्यों, हमने तो डिसाइड किया था कि आज हम कॉलेज के बाद सीधा ऑफिस जाएंगे, और इतने दिनों का काम भी तो पेंडिंग है, वो भी तो देखना है ना, सुनैना ने जैसे उसे याद दिलाते हुए कहा, क्योंकि उसे लगा था इन सब में आदित्य इस बारे में पूरी तरह से भूल गया होगा,
लेकिन आदित्य को इस बारे में याद था और वो जानबूझकर ऑफिस नहीं जाना चाहता, क्योंकि अभी वो अच्छे मूड में नहीं था। इसलिए उसने सोचा, अगर ऐसे में वो ऑफिस जाएगा तो ना तो वो कोई भी काम ठीक से कर पाएगा और बेवजह ही बाकी सारे स्टाफ और वहां काम करने वालों के ऊपर उसका गुस्सा निकल जाएगा। बस इसीलिए वो अभी ऑफिस जाना अवॉइड कर रहा था। आदित्य ने सुनैना की बात का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी सुनैना ने दोबारा से कहा, आदि ऑफिस चलो ना, काफी टाइम से हम ऑफिस नहीं गए हैं। नहीं, मुझे नहीं जाना ऑफिस और हमें अभी सीधा घर जाना चाहिए। और वैसे भी तुम्हारी तबीयत, आदित्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही सुनैना ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ मुझे, लेकिन अगर ऐसे ही मैं हमेशा घर पर ही रहूंगी ना तो जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ घर पर, चलो ना ऑफिस, थोड़ा सा चेंज मिलेगा तो बेटर फील करूंगी, सुनैना ने जैसे थोड़ी सी जिद करते हुए कहा। तो आदित्य ने भी एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके ज्यादा स्ट्रेस मत लेना और ना ही ज्यादा काम करना, बस थोड़ा बहुत। हाँ हाँ ठीक है, काम करने की एक्टिंग कर लूंगी बस, लेकिन चलो तो, सुनैना ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। उसे इस तरह से देखकर आदित्य ने नहीं में अपना सिर हिलाया और सुनैना की ये बात सुनकर उसके फेस पर भी हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वो ऑफिस के लिए निकल गया। डैश डैश डैश। दूसरी तरफ नैना आज कहीं भी जाने का मन नहीं हो रहा। उसे फिल्म प्रोडक्शन हाउस से एक बार कॉल किया आया था किसी इवेंट में जाने के लिए, लेकिन नैना ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वहां जाने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा परेशान है कल रात की वजह से।
इसके अलावा अब तक अक्षत विवान दोनों में से कोई भी घर वापस नहीं आया है और ना ही नैना उन दोनों में से मिल पाई है। मिलना तो दूर, उसकी तो उन दोनों से बात भी नहीं हुई है। वो इस वक्त कैसे भी अक्षत से मिलकर उसे पूरी बात बताना चाहती है जिससे कि उन दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो, लेकिन किसी भी तरह से उससे कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही है। इसी सोच में डूबी हुई नैना वहां अपने रूम में एकदम परेशान सी बैठी हुई है। तभी उसका मोबाइल फोन रिंग होता है जो कि चार्ज पर लगा हुआ था। मोबाइल रिंग होने की आवाज सुनकर नैना लगभग भागते हुए वहां पर आती है और स्क्रीन पर उसने देखा तो एक अननोन नंबर था, लेकिन फिर भी वो कॉल रिसीव कर लेती है, ये सोचकर कि शायद किसी ऐसे इंसान का कॉल हो जिससे उसे अक्षत के बारे में पता चल जाए। पता नहीं क्यों उसे बस इस वक्त अक्षत का ही ध्यान है, बाकी और किसी का भी नहीं। उसने जल्दी से फोन उठाकर अपने कान से लगाया तो दूसरी साइड से एक आदमी की थोड़ी जानी पहचानी सी आवाज उसे सुनाई थी और उसने तुरंत ही पूछा, मैम नैना मैम आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मैं कहाँ पर हूँ? इतना बोलते हुए नैना ने अपने आसपास देखा और फिर आगे बोली, एक मिनट, तुम कौन बोल रहे हो और मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो? मैं क्यों बताऊँ तुम्हें कुछ भी और तुम मुझे मैम कहकर क्यों बुला रहे हो? दूसरी तरफ से फिर से वही जानी पहचानी आवाज़ आई, मैम आपने मुझे नहीं पहचाना क्या? वैसे इन सब बातों का टाइम नहीं है, मैं अजय बोल रहा हूँ और थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए आप फिलहाल घर से बाहर कहीं भी मत जाइएगा क्योंकि इन सब में आपका नाम भी सामने आया है तो थोड़ी सेफ्टी इश्यूज़ हैं, बाकी बंगले के बाहर मैंने गार्ड को अलर्ट कर दिया है। उसकी ये बात सुनकर आखिर नैना भी उसे पहचानते हुए काफी तसल्ली से बोली, अच्छा अजय तुम हो, बट क्या प्रॉब्लम हुई है और कौन सी सेफ्टी इश्यूज, क्या हुआ है, अक्षत कहाँ है, वो ठीक तो नहीं है ना, बताओ मुझे, मेरी कल से उससे बात नहीं हुई, तुम्हें तो उसके बारे में पता होगा ना। नैना के इतने सारे सवाल सुनकर अजय ने एकदम सीरियस आवाज में सिर्फ इतना कहा, नहीं मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वो कहाँ पर है, लेकिन मैं जल्दी ही पता कर लूंगा क्योंकि मैं रास्ते में ही हूँ, बट आप अभी अपना ख्याल रखिए, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। इतना बोलकर वो कॉल डिस्कनेक्ट करने ही वाला था कि तभी नैना ने लगभग चिल्लाते हुए पूछा, नहीं रुको एक मिनट, पहले मुझे ये बताओ कि क्या हुआ है, नहीं तो फिर मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाली, बताओ मुझे अक्षत को क्या हुआ है, वो ठीक तो नहीं है ना, उसे रिलेटेड कोई भी बात है तो वो मुझे पता होनी चाहिए। अगर सच में आपको इस बारे में जानना है तो फिर आप टीवी पर कोई भी एंटरटेनमेंट न्यूज़ चैनल लगाकर देख दीजिए या फिर अपने मोबाइल फ़ोन पर सर्च करके देख लीजिए, इससे ज़्यादा मैं अभी और कुछ नहीं बता सकता। इतना बोलकर आगे नैना की बात सुने बिना ही उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। क्रमशः